तो ही है ना उसके, कौन से उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये सारे कर्मों के नाम हैं। और हर कर्म का क्या क्या कार्य होता है वेदनीय का तो सबको मालूम है। आयु में क्या होता है, इस आयु का कार्य क्या हो रहा है, कुछ शरीर से दूर दूर नहीं जाने देता, मरने नहीं देता, यानी मनुष्य पर्याय में बंदीवान बना कर रखता है। अच्छा आयु कर्म तो अच्छा लगता है ना, बाकी सब कर्म चले जाए तो अच्छा है, चलेगा। आयु कर्म कोई नहीं छोड़ना चाहता है, वो तो बंदीवान बना के रखता है, नहीं समझे, किसी को कारागृह में रखेंगे बंदीवास करके, बंदीगृह में लॉक करके रखेंगे, और बाय चांस कोई भूकंप आया, कुछ हो जाए और वो दीवार टूट जाएगी, तो क्या करेगा वो कैदी, क्या करेगा, भाग जाएगा। हम भी भागते कहाँ, डॉक्टर के पास, कहीं आगे छूट न जाए, इसलिए वो बंदी बनाए ना, तो हम अपनी वो दीवार फिर खड़ी करते हैं डॉक्टर के पास जाकर कि ये छूट न जाए, क्योंकि हमने अपने को देह मान कर रखा है। अरे ये देह छूटेगा, दूसरा तो तैयार है ना वहां पर, नेक्स्ट समय में दूसरा वो मिलने वाला है, यहाँ आना था तो कोई कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं, तो पहले रिजर्वेशन भी किया ना, कितने लोगों ने, तीन तीन चार चार महीने पहले रिजर्वेशन किया, तो दूसरे भव में जाना है तो रिजर्वेशन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बोलो, ऑटोमेटिक होता है। यहाँ से तो कुछ ले जाने वाले नहीं हो भैया, यहाँ का एक पैसा भी साथ में नहीं आने वाला है, धन पूरा इधर छोड़ के जाने वाले को, परंतु उस कमाने के लिए जो एक एक समय का परिणाम किया है, जो कुछ, तो उसके कारण बंधे हुए सारे कर्म साथ में चलने चलेगा और उसका फल भी भोगेगा। मान लो धन ले जाने की कोई फैसिलिटी होती तो क्या होता, अभी तो कहता है कि मैं बीवी के लिए, बच्चों के लिए, हमारे उसके लिए कर रहा हूँ, फैसिलिटी होती तो क्या करता है, बीवी के लिए कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ता, अभी तो कहता है कैसे भी वो भोजन भी करता है, वो तो भी नहीं करता, क्योंकि ले जाना है ना साथ में, भोगेगा भोगेगा, नहीं भोगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जीव को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मनुष्य वो इतना दुर्लभ में दुर्लभ है, एकदम घुमंड साहब ने भी जीव कांड में भी बहुत बार देखा है, एक इंद्रियादि पर्याय में इतना आनंद काल बिता कर द्विंद्रिय पर्याय मिलना भी कितनी दुर्लभ में दुर्लभ बात है, ये तो अभी मनुष्य हुआ है, और मनुष्यपना में शास्त्राभ्यास की मुख्यता यहाँ पर है, और अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है ये सब बातें जानकर, तो ये कहाँ कहाँ अपना उपयोग, इसको कहेंगे कि वृथा हो रहा है, ये तो सबको मालूम है अपना कहाँ कहाँ उपयोग चला जा रहा है, और अपने स्वरूप के चिंतन के बारे में, स्वरूप के ज्ञान के संबंध में हम कितना समय दे पाते हैं, यानी हमारी प्रायोरिटी किस में चल रही है। हमारे माँ बाप ने तो दोहरा, अभी आजकल के तो क्या डेढ़ साल के बच्चे को भी उसका कुछ ट्यूशन और ये वो चल जाता है, गर्भ के पालक से लेकर, क्योंकि उसको कल्याण करना चाहते हैं ना उसका, अपना नहीं हो तो भी चलेगा, तो 20-25 साल तो पढ़ाई में चले जाते हैं, और फिर पढ़ा तो उसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए, तो फिर नौकरी धंधा जो कुछ व्यापार जो कुछ उसमें जुड़ जाते हैं, इतना कमाया तो फिर भोगना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके भी पीछे चले जाते हैं, इतने में समय आ जाता है कि बुलावा आ जाता है, चलो आगे के भव में जाने की तैयारी करो, तो फिर ख्याल आता है हमने कुछ नहीं किया इस भव में, यहाँ सब कुछ कर सकते थे पर वो पूरा भव हमने वेस्ट किया इसके बारे में, यानी ये सीरियसली सोचने लायक बात है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो ये आयु कर्म, जितना आयु कर्म बांधा है, देखो आयु क्या है, हम तो अनादि अनंत रहने वाले, जीव कब मरता है, के शरीर मरता है, कौन मरता है,
कोई नहीं
मरता, फिर भी रोते रहते हैं। देखो अभी संयोग वियोग रूप से भी अभी मनुष्य पर्याय में है, बिल्कुल नेक्स्ट समय में उसकी जो तो पर्याय शुरू होने, देव में भेजते हैं हम गाय को इधर उधर भेजेंगे, तो देव पर्याय शुरू होगी कि नहीं होगी, यहाँ मनुष्य पर्याय रूप से जी रहा है, वहां देव पर्याय रूप से जिएगा, एक समय के लिए भी उसका ऐसा लटक रहा है या कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, या मनुष्य का उदय नेक्स्ट समय में देवायु का उदय चालू हो जाएगा, जो कुछ यथायोग्य उसके तो शरीर धारण करेगा, परंतु उसको अपना स्वरूप पहचानने के लिए इसको कुछ समय नहीं निकाल रहा है, ये उसकी भूल हो रही है। कर्मों के आधार से भी हम भेद ज्ञान की यहाँ पुष्टि कर रही है हमको, केवल कर्मों के नाम रटने से कुछ नहीं होने वाला है। तभी हम आगे देखेंगे, ये तो आयु कर्म चार प्रकार के देखे हमने, नाम कर्म के जो भेद है ना अभी उसके क्या है नाम, थोड़े यहाँ से हम पढ़ेंगे, थोड़े से पढ़ेंगे तो कभी कभी सुनकर वो थोड़ी आदत हो जाएगी, क्योंकि आगे कौन से उन स्थान में कौन से कर्म बनते हैं, कौन से बंधना रूप जाते हैं, वो सारी चर्चा आएगी, तभी कर्मों के नाम काम आने वाले हैं। पहले इनके नाम देख लेते, उनका इन शॉर्ट उनका क्या कार्य होता है उसकी भी बात देखेंगे। ये पेज नंबर 62 है अपने प्रकृति समुद्री अधिकार चले ना, प्रकृतियों के नामों से हम अभी यहाँ परिचय करा रहे हैं। देखो ये नाम कर्म के हैं ना, उसमें तो कुछ तो ऐसे ग्रुप वाली प्रकृतियां याद करने के लिए आसान हो जाती है, और कुछ तो सिंगल सिंगल है। जैसे गति नाम कर्म कहने से चार गति वाले नाम कर्म आते, देव गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, नर गति नाम कर्म, तिर्यंश गति नाम कर्म। तो केवल गति नाम कर्म ऐसा हम याद रखेंगे तो चारों की बात याद आती है। जाति नाम कर्म का अर्थ क्या है, जैन जाति, मोहम्मदन, ब्राह्मण, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रीय जाति, तीनद्रीय जाति, चतुरिंद्रीय जाति और पंचेंद्रीय जाति, ये जाति नाम कर्म। तो अभी हम यहाँ से नाम पहले पढ़ लेते हैं। देखो गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात। देखो गति तो मालूम है ना, चार गति, जाति भी आपने सुन ले। अब ये जो तीन कर्म है, शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, उनके नाम वैसे के वैसे, अभी हमने शरीरों के नाम गिने थे ना, नाम कर्मों में गिने थे, कौन से, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकृत शरीर नाम कर्म, आहार शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कारण उसी नाम के बंधन नाम कर्म भी। जैसे औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म या औदारिक बंधन नाम कर्म, औदारिक शरीर लगा के आगे बंधन करना, या औदारिक शरीर के आगे संघात नाम लगाना, तो उस उसके उसके नाम है। उसके बाद संस्थान नाम कर्म है, संघात, शरीर, बंधन और संघात, तीनों बताए मैंने, पांच पांच और पांच नाम सबके वैसे ही, एक के नाम, एक के आगे शरीर लगाना, दूसरे के आगे बंधन नाम लगाना, तीसरे के आगे संघात नाम। कभी कभी बंधन और संघात को इंक्लूड करते हैं शरीर पे, अभी हम 93 या कुछ कम गिना गिन के बताएंगे आपको, कहीं 148 का हिसाब आता है, कहीं 122 का हिसाब आता है, उसमें ये बातें फिर हम करेंगे। अभी तो हाँ देखो इसका अर्थ क्या है वो देखना है ना, आगे निकालना जरा। संघात यानी वो छिद्र रहित उसकी रचना हो जाती है शरीर की। पेज नंबर 71 निकालना। जो नया पैराग्राफ है, जिसके निमित्त, निमित्त से नहीं, जिसके उदय में शरीर की निष्पत्ति होती है वह शरीर नाम कर्म है। वह पांच प्रकार का है जो अभी हमने गिनाया था, जिसके उदय से औदारिक शरीर की निष्पत्ति होती है वह औदारिक शरीर नाम कर्म है। देखो मनुष्य और तिर्यंचों के कौन सा शरीर पाया जाता है, औदारिक शरीर, यानी इसका अर्थ क्या है, हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो उस जाति के परमाणु ग्रहण करके औदारिक शरीर रूप बनाने का कार्य चल रहा है। देवों और नारकियों में कौन से कर्म का उदय चलता है, वैकृत शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो उस जाति के परमाणु ग्रहण करके वैकृत शरीर की रचना करते हैं। जो मुनिराज आहार शरीर बनाते हैं तो उनके क्या होता है, उस समय आहार शरीर नाम कर्म का उदय होता है, तो आहार शरीर की रचना हो जाती है। तेजस शरीर की तो रचना है, उसके हर समय तेजस शरीर और कारण शरीर के परमाणु तो हर समय जीव ग्रहण कर रहा है, तो ये पांच शरीरों का कार्य क्या है वो बताए नाम कर्म का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। शरीर नाम कर्म के उदय के वश से जो आहार वगैरह रूप पुद्गल स्कंद ग्रहण किए शरीर नाम कर्म के उदय में क्या है, वो केवल पुद्गल परमाणु पुद्गल स्कंद ग्रहण कर दिए उसने, उनके प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध जिसके उदय से होता है वह बंधन नाम कर्म है। वो तो परमाणु ही नहीं, वो तो छोटे छोटे परमाणु ग्रहण किए, अभी उसका एक पिंड रूप स्कंद बनता है, शरीर रूप रचना होती है उसका स्कंद बनता है, वो बंधन नाम कर्म के उदय से होता है। उसके भी पांच नाम है। उसके आगे वाली बात, जिसके उदय से अवदारिकादि शरीरों का छिद्र रहित परस्पर प्रदेशों का एक क्षेत्रावगाह से एकत्वपने को प्राप्त होना वह संघात है। यानी जो शरीर की रचना हुई है वो पूरा एक स्कंद एक पिंड बना है ना, बीच में कोई गैप तो नहीं है, जैसे यहाँ उंगलियां बनी है और यहाँ हाथ है तो बीच में कोई गैप ऐसा तो नहीं, कोई छिद्र कोई होल नहीं है बीच में, तो पूरा एक पिंड बना उसका, ये संघात नाम कर्म का उसका कार्य है। अभी वहां से पढ़ते पढ़ते हम यहाँ आगे भी बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 62 पर हम लिस्ट देख रहे हैं, वहां लिखा है संस्थान नाम कर्म। संस्थान का अर्थ होता है आकार, जैसे मनुष्य का विशिष्ट आकार है, पशु पक्षियों का अपना अपना विशिष्ट आकार है, वो वृक्षों के उसके अपने आकार अलग अलग है, तो ये जो संस्थान नाम कर्म के उदय से वैसे वैसे आकार हो जाते हैं, वही कर्म का उदय उसमें निमित्त रूप से होता है। तो ये संस्थान भी छह प्रकार के पाए जाते हैं, वो 71 पेज पर लिखे देखो। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, जिसके उदय से अवदारिकादि शरीरों का आकार निपजता है वह संस्थान नाम कर्म है। वह छह प्रकार का है, जिससे समान चौकोर आकार होता है वह समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म है, जिसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट बॉडी, समचतुरस्र नाम कर्म। न्यग्रोल यानी बड़ का वृक्ष होता है, उसके समान ऊपर मोटा नीचे पतला ऐसा आकार हो उसको न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म के। फिर स्वाति यानी ऊपर पतला और नीचे मोटा ऐसा आकार हो उसको कहेंगे स्वाति संस्थान नाम कर्म। कुब्जा जो आकार होता है उसको कहेंगे कुब्जक संस्थान नाम कर्म। और ठीकना इसको निर्वात वो वामन संस्थान नाम कर्म। और जिसका कोई विशिष्ट आकार नहीं है, अव्यक्त अवक्तव्य अव्यक्त जिसको कहेंगे वो हुंडक संस्थान नाम कर्म, यानी कोई स्पेसिफिक उसका आकार नहीं कहा जा सकता। उसके बाद नाम क्या है, अंगोपांग। अंग उपांग, अंग यानी मुख्य अवयव, उपांग यानी जो छोटे छोटे अवयव होते हैं उसको अंगोपांग कहते हैं। देखो ये जो अंगोपांग है वो एक इंद्रियों के कोई अंगोपांग नाम कर्म नहीं है, तो ये ना ही तेजस शरीर में होते ना कारवान शरीर में होते, किस में होते हैं, औदारिक में वैक्रिक में और आहार में। तो अंगोपांग नाम कर्म तीन ही है, शरीर नाम कर्म पांच थे, अंगोपांग तीन ही है। जिसको औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है उसको औदारिक अंगोपांग का उदय हो, तो औदारिक अंगोपांग वैक्रिक अंगोपांग और आहार अंगोपांग। अब उसके पश्चात नाम किसका है देखो, अंग और उपांग। उपांग यानी छोटे छोटे उंगलियां वगैरह, और अंग यानी हाथ पैर, वो अंग हो गए। देखो देखो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये ऐसी रचना हो जाती है, जैसे मनुष्य है तो उसके विशिष्ट आकार उसके अवयव है ना, अवयव ने हाथ पैर तो मस्तक है वगैरह, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय, ये मुख्य अंग। उपांग यानी और उंगलियां वगैरह वो छोटे छोटे उसके अवयव के भी उप अवयव, उसको कहेंगे उपांग। अंग और उपांग ये तो द्विंद्रिया से लेकर आगे के जीवों को होगा, एक इंद्रियों में अंग और उपांग नहीं होते। फिर सहनन नाम कर्म, ये सहनन क्या होता है, तो हड्डियों की जो मजबूती वगैरह होती है उसको सहन कहते हैं। देखो 72 पेज पर उसका वर्णन दिया, 72 पेज पर, जिसके उदय से हड्डियों के बंधन की विशेषता होती है। तो मेरा ये प्रश्न है, ये सहन नाम कर्म देवों के होगा कि नारकियों के होगा, उनमें हड्डी नहीं होती है, वैकिरिक शरीर में नहीं होगी, आहार शरीर में भी नहीं होगी, किस में होगी? अवधारित क्षय। तो इन छह में से कोई ना कोई उसमें होगा, ये सहन जिसको होते वो भी एक इंद्रिय में नहीं होगा, द्विंद्रिय से सबको होगा। अब यहाँ देखेंगे, हड्डियों के बंधन की विशेषता होती है वह सहनन नाम करना है, वो छह प्रकार का है। आपने सुने होंगे ना, वज्रवशन नारा सहनन होता है, क्षेत्र को क्षेत्री चढ़ने वालों के, ये तो कंडीशन सुनी होगी आपने, है ना। सातवें नरक में जाने वाले की भी वो होता है, जाने वाले यानी उस मनुष्य की हिंच की बात है, कौन से सहनन वाला कौन से नरक तक या कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, इसके भी नियम है सारे। महिलाओं के कितने सहनन होते उसके भी नियम है, कर्मभूमि के भूमि में तो सबको वज्रोषण नारा सहनन होता है, महिला हो या पुरुष हो, पर वहाँ कोई मोक्ष नहीं है, ना ही नरक में कोई जाता है। यानी ये जो निमित्त बताते हैं वो कुछ नहीं करता है, परंतु जाने वाले जो शबक्षणी चढ़ने वाले जीव, उनकी कौन सी विशेषताएं होती है उसका वर्णन आता है। हम छह नाम देखेंगे, वो छह प्रकार का, देखो वज्र ऋषभ नाराज, उसका अर्थ भी देखेंगे, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता सुपाटिका, असंप्राप्त असुपाटिका, ये उसके नाम है। अब उसका अर्थ भी दिया आगे देखो, सहन नाम है हड्डियों के समूह का, ऋषभ अर्थात जिसके द्वारा वेष्टित करे बांधे, जैसे रस्सी से बांध देते हैं उसका ऊपर का वेष्ट। नाराज नाम कील का है, जैसे कील को ठोकते हैं ना, ये जो टेबल बनाए तो इसमें जो लकड़ी लेके उसमें कील ठोक दी, ऐसे जैसे लोहे की कील लकड़ी में ठोकते हैं। अभी जो वज्र समान होते हैं हड्डियां भी और कील भी, तो वज्र समान जो भेदा ना जाए इससे उसको वज्र कहेंगे। यानी उसका क्या है कि वज्र का ही ऋषभ, ऋषभ यानी उसका हड्डियों का वेष्टन भी वज्र का है, और वज्र का ही नाराज होता है। ऐसे शरीर जिसके उदय से होता है, यानी शरीर हड्डियों की रचना जिससे होती है, उसको कहेंगे वज्र ऋषभ नाराज सहन। जो चरम शरीरी होते हैं ना, उसी भव में मोक्ष जाने वाले, वो इसी सहन के साथ जन्मते हैं। तो इसका बंध कहाँ किया था? पूर्व भव में। ऐसा हो सकता है कि कोई बादर निबोध जीव वहां से मनुष्य में आकर उसी भव में मोक्ष जा सकता है। क्या कहा? सूक्ष्म नहीं का बादर निगोध जीव निगोध पर्याय से निकलकर मनुष्य में आवे और उसी पर्याय में मोक्ष चला जाए। यानी उसने क्या क्या बांधा? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, वज्रषम, नारासन, सब बांध के आया है। तो जीवों को लगता है कि वहां कैसा कैसा शुभ भाव करता होगा, ऐसा प्रश्न नहीं आता कैसा अशुभ भाव करता होगा। क्या मंदिर में बैठता होगा घंटा के ऊपर, क्या करता होगा, या शिखर जी के ऊपर जन्मता होगा? ये तो उसके सहज संकलेश विशुद्धि के परिणाम होते हैं, वहां इसे सहज रूप से परिणाम यानी उसके कर्म बनते हैं। हमें तो आश्चर्य लगता है क्योंकि हम क्या है, सोच समझ कर करने वाले ऐसे अपने को मान रखा है, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हम कंट्रोलर होके बैठे हैं अपने भावों के, कौन से ये शुभ भाव मैं कर सकता हूँ, शुभ है मैं छोड़ सकता हूँ, है ना। ये ऋषभ वज्र ऋषभ नाराज की बात की, जहाँ वज्र का ऋषभ है जो वेष्टन है वो वज्र का नहीं है, सामान्य है, तो उसको क्या कहेंगे? वज्र नाराज। अब जो वज्र विशेषण से रहित साधारण नाराज यानी की लिख है, उसको कहेंगे नाराज सहन। फिर जहां हड्डियों की संधि अर्ध कीलित होती है उसको अर्ध नाराज कहते हैं, और जहां वज्र की हड्डी भी नहीं है और वो परस्पर कीलित हो, ऐसा जिसका उद्देश्य होता है वो कीलित शरीर सहन है। और जहां परस्पर प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती जैसे हमारे जॉइंट्स कैसे हैं, हड्डियाँ कैसी है, एक दूसरे पर ऐसी है, वो बाहर से टेंडन मसल्स वगैरह से बंधी हुई है, हड्डी में कील नहीं है वो, जैसे घुटने का है, यहाँ का है एल्बो जॉइंट, ऐसे एक दूसरे में है, परंतु वो एक दूसरे के ऊपर घूमती है और नसों के द्वारा उसको एक दूसरे के साथ वो फिक्स हुई है। जैसे उंगली की जो हड्डी है, ये हड्डी जुदी है, ये हड्डी जुदी है, उसमें कोई कील नहीं होता अंदर, कोई ऐसा किला जैसा नहीं है उसमें, तो ये सारे कैसे असंप्राप्त रूपालिका वाले, अभी उसके बाद देखते हैं। ये सारे सहनन की बात होगी। उसके बाद नाम क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं कहा, जब बंटवारा होगा तब कहेंगे क्या उसका क्या है। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये नाम कर्म के उदय में क्या होता है? उस वर्ण वाले, उस इस जैसे गंध रस वाले परमाणुओं से शरीर की रचना होती है। ये शरीर में उसका कार्य जो बनता है, यानी ये गोरे वाले वही परमाणु, कोई अमेरिकन यहाँ आएंगे तो वही उस रंग के ही परमाणु ग्रहण करेंगे, और अफ्रीकन यहाँ आएंगे तो वहां से कोई लेके नहीं आते रहते हैं। आनुपूर्वी नाम करो, ये स्पेशल है। ये आनुपूर्वी का कार्य क्या होता है, कब होता है? बस विग्रह गति में। विग्रह गति किसको कहना? जीव एक भाव से मरकर, अभी मनुष्य मर कर और अन्य भाव में चला जाता है नया देह धारण करने के लिए, उसको कहेंगे विग्रह गति। जो एक सिंगल समय में पहुंच जाता है इसको रुजु गति कहेंगे, उसमें मोड़ नहीं होता। जो मोड़े से ही जाता है, एक मोड़ या दो मोड़ या तीन मोड़, तो उसको कहेंगे एक मोड़ वाला या दो मोड़ वाला या तीन मोड़ वाला। तो कहते कि वहां पर जहां मोड़ सहित गति होती है वहीं पर आनुपूर्वी का उदय होता है, एक मोड़ तक या दूसरे मोड़ तक या तीसरे मोड़ तक। जब जहां शरीर धारण करना है वहां पहुंचते ही वो नया संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है, उसके पूर्व में नहीं। तो उसके पूर्व में क्या होता है? पहला जो भोग छोड़ गया है ना उसी का आकार कायम रहता है, नहीं समझे? जैसे घोड़ा मर गया और मनुष्य में उत्पन्न हो रहा है, अगर दो मोड़ से आ रहा है, कोई अमेरिका में से मरकर या इंडिया में उत्पन्न हो रहा है, तो उसने दो मोड़ लिए, तीसरे समय में तो पहुंच गया, दो मोड़ लिए, दो समय तक उसका वो पूर्व कौन सा था? वो घोड़ा। अभी मनुष्य है, मनुष्य गति का उदय चालू हो गया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय चालू हो गया, परंतु आकार कौन सा रहा? तो घोड़े का आकार का मनुष्य दिखाया ना आपको आपने। आनुपूर्वी का इतना ही कार्य, जो बिना मोड़ से ही जाएगा उसका आनुपूर्वी का उदय भी नहीं होगा। आनुपूर्वी का कर्म हर समय बन रहा है, गति बनती हर समय, उसके साथ उसी नाम वाला अनुपूर्वी भी बनता है, ये नियम है। अभी किसको कौन सी गतियां बनती है, कौन से गुणस्थान में, उसकी अलग अलग विवेचना है। जैसे मिथ्या दृष्टि है, हर अंतर्मुख में पलट पलट कर चारों गति का बंध करता ही करता है। आप पूछेंगे हम तो जैनी है, क्या नर गति का भी बंध करेंगे? हाँ, मिथ्या दृष्टि हो तो करेंगे, क्योंकि वो तो नियम है। अंतर्मुख के अंदर ही वो साथ पांचों जातियों का और चारों गतियों का तो बंध उलट पुलट कर होता है। ये सभी संस्थान है, सहनन है, ये सभी का बंध उलट पुलट कर तो होता ही है। जैसे अपने परिणाम है वैसे जैसे इनके जुदे जुदे बंध हो रहे हैं। अभी उदय की बात नहीं चल रही, बंध की बात चल रही। उदय जिसका जो सहनन है वो थ्रू आउट लाइफ वही सहनन का उदय रहेगा। जो जिस संस्थान में लेकर जन्म है उदय हुआ उसी उस लाइफ में वही संस्थान का उदय होगा। समझ में आती कुछ बात? जैसे औदारिक शरीर का हमारा उदय तो औदारिक ही शरीर रहेगा, पर बंध हाँ, अभी जो कोई नरक गति बांध रहा है तो उसके साथ औदारिक शरीर सॉरी वैकृत शरीर का बंध करेगा, देवगति के साथ वैकृत शरीर का बंध करेगा। अभी इसके जो विशेषता है उसको आगे हम देखेंगे, अभी तो उनके नामों से जरा परिचय कराते हैं। नामों से क्या है बहुत बोर हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते एक एक का स्वरूप देखते देखते, बनते समय कुछ नहीं बोर होते। हाँ, रुजु गति वाले को आनुपूर्वी का उदय नहीं रहता, बंद कर लेगा, क्योंकि विग्रह गति में भी बंद है कि नहीं बंद, हर समय कोई ना कोई गति तो बंद ही रही है। तो यहाँ आनुपूर्वी देखिए हमने, उसके बाद देखो चार नाम एक साथ आपको याद, अगुर लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, याद करने के लिए है तो सिंगल सिंगल सब। तो अगुर लघु में क्या होता है, शरीर की ऐसी रचना होती है ना अति हेवी ना अति हल्का, इस तरह से उसकी रचना होती है शरीर। ये आगे हम पढ़ रहे थे 72 पेज पर, वहाँ है। हाँ, 73 पेज पर, 73 पेज पर यहाँ लिखा दूसरा पैराग्राफ, जिसके उदय से, यानी अग्र लघु नाम कर्म के उदय से क्या हो रहा है, शरीर भारी भी नहीं होता, लोहे के पिंड की तरह नीचे नहीं गिरता और हल्का भी नहीं रहता कि आग के कुल के समान उड़ जाए कहीं इस तरह से। तो मेरा एक प्रश्न है, 1 किलो लोहा है और 1 किलो कपास है, तो कौन सा हल्का होगा? क्या कह रहे हैं? दोनों सेम है। नहीं समझे, हमने किलो बता दिया ना। हाँ, कपास 1 किलो इतना होगा और लोहा 1 किलो इतना होगा। हमें क्या लगता है, लोहा भारी है। हमने पहले उसका वजन बता दिया था। देखो, उपघात नाम कर्म, ये उपघात नाम कर्म में शरीर में ऐसे कुछ अवयव होते हैं कि अपना ही घात करे, उसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बड़े सिंह है, मोटा उदर वगैरह वगैरह। अब जिसके उदय में से दूसरों का घात करे, जो नाखून है या जो वाघ सिंह उनके दांत है या सर्प के दांत में विष है, ये सब क्या है? परघात नाम कर्म का उदय होता है। अब दूसरी बात, उसके बाद आतप उच्छ्वास है, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय में वो श्वासोश्वास चलता है। अब आतप और उद्योग, आतप नाम कर्म जो है वो सूर्य के जो पृथ्वी का एक विमान है, सूर्य विमान, उसी में ये आतप नाम कर्म का उदय होता है, अन्य किसी के नहीं है। बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव है, उन्हीं के उसका उदय रहेगा। उद्योग नाम कर्म वो तो एक इंद्रिय में भी हो सकता है, पृथ्वी में, जल में भी हो सकता है, वनस्पति में भी हो सकता है, और द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तीरियंचों में भी हो सकता है। यानी तीरियंच गति में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक ये उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है। ये चमकीले जो शरीर होते हैं उसको, द्विंद्रिय वो जो देखो जुग्नु वगैरह होते हैं ना, उसमें भी यथायोग्य हो गए ना, हमें कहाँ सभी जीव मालूम है। पंचेंद्रियों के भी बताए हैं ना, पंचेंद्रिय, हाँ, संगी असंगी ये सब क्यों होता है। तो ये उद्योत नाम कर्म है, ये हो गया। विहायोगति, विहायोगति यानी जो चलते हैं द्विंद्रियादि जीवों के, इसका उदय एक इंद्रियों में ये नहीं है। पानी का बहना या वायु का जो वो विहायोगति नाम कर्म के उदय से नहीं, वो उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, पानी ढलान की ओर बहता है, वो ऐसा स्वयं गमन करके नहीं चलता। तो ये विहायोगति नाम कर्म का उदय द्विंद्रियादि से आगे होता है। ये त्रस, स्थावर, बादर और सूक्ष्म, ये नाम कर्म। त्रस तो समझते ना, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनको त्रस क्यों कहते हैं? उनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए उनका नाम है त्रस जी। तो अरिहंत भगवान त्रस है कि स्थावर है? उसका उदय है ना, 14 गुण स्थान तक उदय है उसका। अस्थावर नाम कर्म जो एक इंद्रिय है, उनके जो पांचों प्रकार के जो है, वो पांच पृथ्वी का ही पद, वो सब स्थावर नाम कर्म के उदय सहित है। बादर और सूक्ष्म, देखो एक जोड़ी जोड़ी है। बादर यानी उनके ऐसा शरीर होता है तो एक दूसरे को प्रतिघात करते हैं, वो किसी आधार से रहते हैं, भले बादर विबोध भी क्यों है, वो किसी अन्य के आधार से रहते, उसको कहेंगे बादर जीव। सूक्ष्म जीव बिना किसी आधार से पूरे लोकाकाश में पांचों प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म निगोद, ये सभी पूरे लोक में है, इसको कहेंगे सूक्ष्म। वो किसी आधार के बिना रहते हैं, वो ना अग्नि से जलते हैं, ना किसी से कटते हैं, ना कोई ऐसे मसले जाते हैं, कदली घास से उनका मरण भी नहीं होगा। हम जो बचाने की कोशिश करते हैं, जिनका मरण न हो हमारे निमित्त से, वो सब बादर की बात है। सूक्ष्म जीव तो ऐसे मसले ही नहीं जा सकते, ये बादर और सूक्ष्म हो गए। पर्याप्त और अपर्याप्त, ये अपने यहाँ पर्याप्तियों की चर्चा बहुत बार हुई थी। पर्याप्त नाम कर्म वाले कैसे हैं, जितनी आयु लेकर आए हैं वो पूरी भोगेंगे, पर्याप्तियाँ उनकी पूर्ण होगी, उनको कहेंगे पर्याप्त नाम कर्म वाले। हाँ, उसमें कर्म के घर से मरने वाले वो जुदे हैं, परंतु पर्याप्त नाम कर्म लेके आते उनकी पर्याप्तियाँ पूरी होती है। अपर्याप्त नाम कर्म वाले एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, उसके पहले उनका मरण होता है, इतनी छोटी आयु होती है। और ये एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सब में ऐसे हो सकते हैं अपर्याप्त, मात्र निबोध में ही होता है ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे कौन सा नाम है अभी, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। ये प्रत्येक शरीर क्या होता है, ये नाम कर्म ऐसा है, एक जीव इसका एक शरीर, यानी एक शरीर का स्वामी एक जीव, ऐसे जीवों को कहेंगे प्रत्येक शरीरी जीव। और उस नाम कर्म का नाम है प्रत्येक शरीर नाम कर्म। ये प्रत्येक शरीर वाले कौन कौन है, ये निबोध को छोड़कर बाकी सारे प्रत्येक शरीर वाले ही है, क्योंकि साधारण शरीर वाले कौन है, वो निबोध, वहां क्या पोजीशन है, एक शरीर और उसके स्वामी अनंत जीव। क्यों ऐसा, उनके साधारण नाम कर्म का उदय। तो ऐसे अनंत जीव एक शरीर में एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक समय में सेम आयु लेकर उसी शरीर में उत्पन्न हो गए, क्योंकि एक साथ जन्मने वाले एक साथ मरते हैं, वो आगे पीछे भी नहीं मरते, एक साथ जो जन्म लेते हैं ऐसे ही एक साथ जन्मेंगे, वहां उतनी निश्चित उतनी ही समय की आयु बांध के आए हैं, वही एक साथ जन्मेंगे, वो सारे एक साथ मरेंगे। उस निगोद में पर्याप्त में जन्मने वाले तो सारे पर्याप्त हो गए, अपर्याप्त में जन्मने वाले सारे अपर्याप्त हो गए। निगोद की चर्चा हमने बहुत की थी ना, जीवकांड में बहुत बार की। तो उस पर्याय में क्यों जन्म लेते हैं, साधारण नाम कर्म का बंध करता है, उसमें वो उसका उदय होता है, तो उस पर्याय में उसका जन्म हो जाता है। उसके बाद स्थिर अस्थिर, ये स्थिर और अस्थिर क्या होता है, देखो निका भी ये पेज नंबर 75 ऊपर से 8वीं लाइन, देखो धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर स्थिर न रहे, जिसके उदय से चलायमान हो वह अस्थिर न, स्थिर कहां गया फिर, तो स्थिर रहता है वो स्थिर नाम कर्म है। नहीं, यहां पर है वो पेज नंबर 74 पर है, ये जो गाथा है ना दो, उसके ऊपर, जिसके उदय से रसादिक धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे वह स्थिर नाम कर्म है। देखो उसको नीचे अर्थ में समझाया है, रस से लोही, रसे ने वो लिम्फ जैसे पानी जैसा पदार्थ है उसको रस कहा, उससे लोही ने खून या रक्त होता है, रक्त से मांस होता है, मांस से मेद होता है, मेद से हड्डी होती है, हड्डी से मज्जा होती है, मज्जा से शुक्र होता है, और शुक्र से प्रसूति रूप प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये सात धातु, देखो ये क्या होता है कि ये जो परमाणु है पहले रस रूप होते हैं, फिर ये उनका परिणमन आगे आगे वाले होते हैं, कुछ काल तक अपने रूप रहते हैं और बाद में वो आगे वाले में परिणमित होते हैं। अपने रूप रहना वो है स्थिर नाम कर्म का उदय, और आगे में परिणमन होना वो अस्थिर नाम कर्म का उदय, दोनों का ही कार्य एट ए टाइम चलता रहता है, वो तो थ्रू आउट लाइफ टाइम स्थिर अस्थिर दोनों का कार्य चलता है, दोनों ही उदय रूप होती है। बंद एक समय में एक का होता है, पर उदय दोनों का एट ए टाइम चलता है। अब ये स्थिर अस्थिर का उदय तो देवों के भी है, उनके भी शरीर में जो यथायु के परिणाम होता है वो तो धातु रहित है, परंतु वहां पर भी जो यथायु समझना उसका, तो ये स्थिर अस्थिर का काम हो गया। अभी शुभ अशुभ, यहां पहले सभी शुभ कर्म लिए, बाद में सभी अशुभ लिए, मैं एक साथ बताता हूं। शुभ अशुभ 74 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, जिसके उदय से मस्तकादि शरीर के अवयव मनोज्ञ रमणीय प्रशस्त हो वह शुभ नाम कर्म है। ये शुभ अशुभ में से वो शुभ नाम कर्म, नहीं तो जो सारी प्रकृतियों में हम शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म गिनते वो मात अलग, जिसको हम प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियां कहते हैं, सभी प्रशस्त प्रकृतियां जुदी नाम कर्म की और अप्रशस्त कर्म की लिस्ट जुदी है। यहाँ शुभ नाम का एक नाम कर्म है और अशुभ नाम का एक नाम कर्म है। इसके अगेंस्ट समझना कि शरीर आदि अवयव मनोज्ञ नहीं है, रमणीय नहीं है, उसको अशुभ नाम कर्म कही है। अब सुभग और दुर्भग, जिसके उदय से अन्य जीव आपसे प्रीति करे वह सुभग नाम कर्म है। और इसका उल्टा कि कभी कभी तो अवयव तो बराबर ठीक ठाक है परंतु कोई उसके लोगों को अपील नहीं होता है, कोई या प्रीति कोई नहीं करते तो दुर्भग। उसके आगे जिसके उदय से मनोज्ञ सुहावना स्वर यानी शब्द निपजे वह सुस्वर नाम कर्म है। अब दुस्वर का इसका कार्य उसका उल्टा, कर्कश आवाज है ऐसे जिसकी बद्दी आवाज होती तो उसको कहें दुस्वर नाम कर्म। जिसके उदय से प्रभा यानी कांति युक्त शरीर निपजे वह आदेय नाम कर्म है। इसके उल्टा कौन सा है? अनादेय यानी कांति रहित निस्तेज शरीर। जिसके उदय से अपना पुण्य रूप पवित्र गुण जगत में प्रकट हो यश हो वह यशस्वी कीर्ति नाम कर्म है। और इसके अगेंस्ट अयशस्वी कीर्ति नाम। तो मेरा एक छोटा प्रश्न है, हनुमान जी तो मोक्ष गए ना, अभी उनको तो पूरी दुनिया अभी उनको बंदर समझती है, पूछ लगाती है और इतने क्या मुंह ऐसा दिखाती है, तो उनके कौन से नाम कर्म का उदय है? अरे वो मोक्ष चले गए, ये तो लोगों की मिथ्या मान्यता है, उसमें उनका कुछ नहीं है, उनके कुछ ही हाँ तो उनका हाँ। पर ये तो ऐसा होगा ना कि यहाँ हमारा कुछ हमें लाभ हो जाएगा तो हमारे बाप जादे की कहो या माँ बाप की कहो या किसी की, उसकी तो पुण्य ही होगी कि नहीं होगी, हम क्या कहते हैं? अरे माता पिता की पुण्य, अरे वो तो गए ना, उनका पुण्य लेके गए कि छोड़ के गए आपके लिए? कोई तो कहे थे कि हमारे ये जो हवेली है, हवेली यानी कोई हमारा जो बिल्डिंग है हमारी, हमारा घर है, उसकी पुण्य है, तो जड़ में भी होती होगी पुण्य है। ये मराठी में बहुत ऐसे कहने की पद्धति है, क्यों भैया सुना है कि नहीं सुना? हाँ कहा में यानी क्या समझते हैं कि वो पुण्य हो या पाप को अपना लेके गए कि छोड़ के गए? कुछ पुण्य लेके, और मरने के बाद हम क्या करते हैं? कुछ कर्म धन विधान वगैरह कर देते, पूजा करते, क्यों? उनके शांति के लिए। अरे उनकी शांति के अगर हम वो पूजा में अपना ध्यान लगाए तो हमारी शांति हो जाएगी, कुछ विचारों में कुछ शांति हो जाएगी। हम तो ऐसा हमने नहीं किया तो उनकी आत्मा का क्या होगा? उनके जो कुछ कर्म बांधे हैं, जो परिणाम है, वो सब लेके गए हैं साथ में, यहाँ कुछ नहीं है उनका, छोटा कुछ नहीं है। आपके कुछ करने नहीं करने से उसका कुछ नहीं बिगाड़ होने वाला, सुधार भी नहीं होगा। ये आधे अनादेय हो गए। हाँ आगे बढ़ते हैं, यशस्कृति और यशस्कृति हो गए। इसके भी सारे नियम है, कहाँ तक बनती है, कौन से गुणस्थान तक, कौन से गुणस्थान तक उदय होता है, इसके सारे नियम है। और यशस्कृति का उदय तो पांचवे के आगे होगा भी नहीं, ये सब उदय विच्छित्ति बंधे विच्छित्ति में सब बातें आएगी। अब निर्माण नाम कर्म आगे कौन सा है? देखो स्थिर स्थिर शुभ 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 दुर्भ सुस्वर दुस्वर आदे अनादे यशस्कृति यशस्कृति निर्माण और तीर्थंकर। अब निर्माण नाम कर्म में क्या होता है? जिसके उदय से यथा योग्य निष्पत्ति होती, निष्पत्ति नहीं शरीर की उत्पत्ति होती है, वह निर्माण नाम कर्म है। उसमें क्या क्या होता है? वो एक है स्थान निर्माण और एक है प्रमाण निर्माण। तो जाति नाम कर्म के उदय की साक्ष है, जैसे एक केंद्रीय जाति नाम कर्म है, द्विंद्रीय जाति नाम कर्म है, तीनद्रीय जाति नाम कर्म है। जैसे मनुष्य पर्याय का जीव है तो उसके अवयव उसके शरीर की रचना उसके अनुसार होगी ना। तो स्थान निर्माण यानी जहाँ मनुष्य की आंखें होती है उसकी विशिष्ट स्थान है, और मछली होती है उसकी आंखें उसकी निश्चित स्थान है, और जो मेंढक होते हैं उसकी आंखें कैसी होगी उसका विशिष्ट स्थान है। ये स्थान निर्माण में आता है। तो नेत्रादि जिस स्थान में होना चाहिए उसी स्थान पर निप जाए वह स्थान निर्माण, और जितने प्रमाण में होना चाहिए उतने प्रमाण में उत्पन्न हो गए, तो दो आंखें हैं, किसी की तीसरी भी आंख हो जाए ना ऐसा, यहाँ पर उंगलियां पांच है, किसी की छठी भी हो जाती है, ये हाथ है परंतु किसी को नहीं भी होता है, यहीं से उंगलियां निकलती। ये तो जो स्नान कर्म में जो कुछ प्रमाण और स्थान निर्माण में उसके जो कुछ बातें बनती है ऐसी, वो सब नाम कर्म ऐसा लेके आता है ना, बांधा है तो ऐसा उसका उदय हो रहा है।
मस्तक दो धड़ी कैसे?
हाँ, मस्तक दो और धड़ी, उसमें अलग अलग बातें सब ये उसी से हो जाती है। अब कहीं कहीं तो दो जीव भिन्न है ना, उसे हम स्टीन कहते हैं, वो बात अलग है उनके शरीर जुड़े हैं। यानी ये सारे कर्मों के उदय में ये सभी बातें बनती है, सहज रूप से बनती है। ये पहले उन्होंने सभी स्थिर अस्थिर की बात की, उसी की ये तो हमने पढ़ लिए सब। ये तीर्थंकर नाम कर्म की बात है ना लास्ट में, वो अर्थंतर तीर्थंकर पद को कारण हुआ तीर्थंकर नाम कर्म है। तीर्थंकर नाम कर्म तो समय दृष्टि के ही बनता है, मिथ्या दृष्टि का उसका बंधन ही नहीं होता। नरक में भी ऐसे जीव है, कौन से? पहले दूसरे और तीसरे नरक जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले हैं, कितने हो गए वहां पर? असंख्यात। भाई उस दिन आपने फोन किया था ना प्रश्न, पहले नरक में असंख्यात जीव, वो तो सारे क्षायिक है। पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति सहित जाने वाले सारे क्षायिक समय दृष्टि है। हाँ, 6-8 महीने में कोई थोड़े से जीव जाते हो गए, परंतु वहां तो इतनी लंबी आयु है, तो उसमें तो असंख्यात जीव वहां पड़े, और वहां से आकर नियम से तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले। आप कहेंगे हमारे यहाँ तो कितने काल बाकी, अभी यहाँ की क्यों चिंता कर रहे हैं, विदेश क्षेत्र में तो हमेशा होगी ही होगी, और वहाँ की मैक्सिमम आयु कितनी है? करोड़ पूर्व की। तो करोड़ पूर्व के बाद तो वो तो मिनिमम 20 तो होते हैं, मैक्सिमम कहीं कभी कभी 170 भी होते हैं। तो केवल एक पल्य जो प्रमाण है उसमें भी असंख्यात वे भाग में असंख्यात करोड़ पूर्व जाएंगे, तो दूसरे नरक की आयु और ज्यादा है, तीसरे के और ज्यादा है, जैसे 3.5 सागर तक आयु होती तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले के। तो वहां से आकर वो सारे नियम से तीर्थंकर होने वाले हैं, और ऐसे जीव असंख्यात है। ये नरकों की बात है, स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक। अभी सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात जीव है, पर बाकी सभी स्वर्गों में असंख्यात जीव है कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, और वहां से आकर मोक्ष जाएंगे, तीर्थंकर होकर मोक्ष जाएंगे नियम से, क्योंकि वो लंबा काल है ना, सागरों की आयु है। तो सागरों में कितने यहाँ से जाते समय बांध कर जाने वाले जीव थोड़े हुए, दो चार भी जाते हैं, परंतु सागरों की आयु में कितने इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या असंख्यात बन जाती है। वहां कोई नए से बंध नहीं प्रारंभ करता है, यहाँ से जिसने बांधना शुरू किया है वो वहां चला जाता है, और वहां से आकर तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कोई भोर भूमि में नहीं जाता। यानी जिसने मनुष्यायु या तिर्यचायु बांधी है, ऐसा मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं कर सकता, ये नियम है उसका। यानी या तो देव होकर फिर मनुष्य होकर तीर्थंकर हो गए, नरक में जाकर फिर मनुष्य होकर फिर तीर्थंकर। हाँ, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर मोक्ष जाने वाले की भी बात आती है, 2 या 3 कल्याणक वाले। ये तीर्थंकर प्रकृति की बात है। अभी उसकी कंडीशन क्या क्या, वो सब बंध में आएंगे आगे चल, कौन बांध सकता है, कहाँ बांध सकता है।
ऐसा भी कथन है सौधर्मेंद्र 2 सागर की आयु में असंख्यात तीर्थंकरों की।
हाँ, वही तो मैंने उस दिन बात की थी आपसे फोन पर भी, क्योंकि 2 सागर की आयु है तो सौधर्म इंद्र कितने पंच कल्याण अटेंड करता होगा, असंख्यात। भरत भूमि के नहीं जा, छोड़ दो उसको, परंतु विदेह के भी जाएगा ना। अब भले वहां वो तो मुखिया नहीं होगा, नहीं समझे, वहां तो सनत कुमार और महेंद्र होते हैं विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र वाले तो सौधर्म इंद्र है मुख्य, और ऐरावत में तो ईशान इंद्र मुख्य है वहां का, वहां ईशान इंद्र की बोली ज्यादा जाती होगी। हाँ, तो ये हम यहाँ देखते थे ना। हाँ, तीर्थंकर की बात हो गई। अब देखो ये वो लिस्ट निकालना 62 पेज के ऊपर। इसमें से कुछ तो पिंड प्रकृति यानी ग्रुप वाली है, और कुछ तो सिंगल सिंगल है। देखो अभी इसको इसी क्रम से कैसे याद रखना आप, ये देखना, देखो गति जाति, मैं एक एक नाम लो आपको रिपीट करना है, क्योंकि थोड़े एक बार बोलेंगे तो हम थोड़े उससे परिचित हो जाएंगे। गति जाति शरीर बंधन संघात संस्थान अंगोपांग सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श आणुपूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास आतप उद्योत विहायो गति त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय यशस्कीर्ति अयशस्कीर्ति निर्माण तीर्थंकर। देखो गति जाति शरीर बंधन संघात, ये तो फटाफट आप समझ में आ सकी बात है, इसमें ये तो हम याद ही करेंगे, और बाद में जो है ना त्रसादि चार कहेंगे, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक और उसके अपोजिट वाले, यानी वो चार जोड़ी आपको याद है। फिर स्थिरादि छह करेंगे तो स्थिर शुभ शुभ सुस्वर आदि यशस्की और उसके अगेंस्ट वाले, यानी वो चार युगल जोड़ी और ये छह जोड़ी, यानी वो चार दुनिया आठ और ये छह दुनिया बारह, बीस तो यहीं पर हो गई। इस तरह से याद करना है उसको, क्योंकि कुछ कुछ सिंगल है परंतु हम इकट्ठा इसलिए अगुरु लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास इस तरह से याद कर लेते, यानी इन नामों से परिचित हो जाएंगे तब जब आगे चलकर कुछ विषय निकलेंगे तो फिर हम इसको इस पेज को रेफर करके यहाँ देखेंगे। ऐसा ही नियम है कि जहाँ अति अप्रशस्त है वो तो पहले पहले बंधना रुक जाती है, कौन सी प्रकृति कहाँ बंधना रुक जाती है कौन से गुणस्थान में उसके सारे नियम है, उसको तो हमें ऐसा क्यों क्यों के लिए कोई सवाल नहीं होता, स्वभाव में कोई क्यों का प्रश्न उठता ही नहीं है, ऐसे उन प्रकृतियों का स्वभाव सहज है तो उस गुणस्थान में उनके उनका बंधन रुक जाएगा, यही उसका उत्तर है, उसके लिए क्यों वाली कोई बात नहीं होती। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ये इसी का वर्णन है सर, सहनन आदि की बात, यानी उसमें सारे नियम होते हैं ना, कौन से सहनन वाले कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते वगैरह सभी, ये नियम सारे निमित्त रूप से बताए। यहाँ एक बात मैं बताना चाहती हूँ 68 पेज पर, अभी हमने देखे मोहनी के नाम देखे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, यहाँ उसके अन्य भी नाम आते हैं, समयसार में भी ये नाम आए, देखो नीचे का पैराग्राफ पेज नंबर 68 पर, मोहनीय कर्म चार प्रकार का है, हमने तो दो ही प्रकार देखे, कौन से, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, पर चारित्र मोहनी के और दो भेद करके उनके चार नाम बताए, देखो कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, ये वेदनीय के भेद नहीं है, चारित्र मोहनीय के दो भेद है जिसको हम कषाय और नो कषाय कहते हैं कर्म, उसी का दूसरा नाम क्या है, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, वहां दर्शन मोहनी प्रकार का है वो तो अभी हमने देखी उसकी चर्चा की थी, उसके नीचे एक लिखा है देखो चौथी लाइन, वहां जिसके उदय से सर्वज्ञ प्रतीक प्रणित, प्रणित ने सर्वज्ञ ने बताए हुए सर्वज्ञ प्रणित मार्ग से परांगमुख हो, परांगमुख ने भी मुख हो उससे उल्टी दिशा में जा रहा है, यानी वो मार्ग जिसको नहीं रुचता है, तत्वार श्रद्धान का उद्यमी न हो, उसका उसकी रुचि नहीं है उसमें उद्यम भी नहीं करता है, हिताहित का विचार करने के लिए समर्थ न हो, ऐसी मिथ्या दृष्टि हो जिसकी दृष्टि ऐसी मिथ्या है वह मिथ्यात्व है, यानी ये जो मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव के ऐसे भाव हो रहे वो स्वयं कर रहा है, वो मिथ्यात्व का भाव उदय पाया जाता है। आगे भी बातें बताई है, ये कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय नामों की बात मैं बताना चाहती थी कि ऐसे नाम आने से घबराना नहीं, ये कुछ वेदनीय के भेद नहीं है, चारित्र मोहनीय के दो भेद है, ये सारे सहनन वगैरह की हमने बात देखी थी यहाँ पर। अभी हम 76 पेज पर आ रहे हैं। ये हमने सारी गिनाई ना प्रकृतियां, हाँ ये प्रकृतियां जो गिनाई है, यहाँ आना 35 नंबर तक आता है ना, पेज नंबर 76। देखो इनकी टोटल कितनी है, तो वहां 47 होने या 148 होती है, तो कहीं कहीं 122 का हिसाब बताते हैं वो कैसा। तो हमने जो वर्ण रस गंध स्पर्श देखे थे वो उसकी अगर डिटेल, उसके पर्याय अगर हम देखेंगे तो उसके नाम भी वैसे होते हैं, 20 पर्याय होते हैं, स्पर्श के 8 पर्याय हैं, इस तरह से रस के 5 है, गंध की 2 है, इस तरह से उसकी 20 पर्याय, तो 20 उसके नाम कर्म भी 20 अलग अलग होते हैं। उसके बदले केवल हम वर्ण रस गंध स्पर्श गिने, 20 के बदले 4 गिने, तो 16 हमने नहीं गिने, माइनस करो 16। शरीर बंधन और संगत, नाम वही के वही है, तो शरीर नाम कर्म में उनको इंक्लूड करते हैं, बंधन के 5 और संगत के 5, तो 15 के बदले हमने 5 गिने, वहां 10 कम हुए और यहाँ 16 कम हुए, 26 कम कर दिए, 148 में से 26 कम हुए, तो कितने रह गए, 122। तो कहीं कहीं 122 का हिसाब करेंगे, वो बंधन संघर्ष के नाम भी नहीं लेंगे, बात वही की वही है, गिनने का तरीका अलग अलग है। तो ये 122 प्रकृतियों में से बंधने वाली कितनी है, हमने देखा था सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बंधने वाली प्रकृति नहीं है, दो ही गई ना, तो बंधने वाली कितनी है, 120। 120 प्रकृतियां बंधने योग्य है, तो कहां कितनी बनती है नहीं बनती उसका हिसाब 120 के हिसाब से हम करेंगे। तो उदय कितने कितने होता है, यहाँ एक जीव के एट ए टाइम की बात नहीं है, अन्य अन्य जीव की मिलकर की बात है, क्योंकि कोई सब 120 का एक एट ए टाइम कोई बंद नहीं कर रहा है। उदय रूप कितनी हो सकती है, 122, और सत्ता रूप 122। सत्ता में ना, किसी को इसकी सत्ता है, किसी को दूसरे की सत्ता है, इस तरह से सभी सभी की सत्ता तो विद्यमान रह सकती है। इस तरह से बंधने में 120 का हिसाब लगाएंगे, उदय में 122 का लगाएंगे, और सत्ता में भी 122, या जहां 148 की मुख्यता से बात करते हैं वहां 148 की बात करेंगे। तो इस तरह से उसकी चर्चा हम विशेषता करेंगे। अभी तो हमने उसकी केवल नाम देखेंगे और उसका कुछ कुछ जो कार्य उसकी भी कुछ चर्चा कर दी है। यानी यहाँ बंध रूप 120 होती है और उदय रूप और सत्व रूप 122 होती है, यहाँ तक तो अपनी बात की, अब यहीं रुकेंगे हम, बाकी चर्चा दो पहले। बोलो 24 भगवान।